ओम शांति। कल प्यारे बाप दादा ने अपने अति प्यारे बच्चों को मुरली के द्वारा जो कुछ बताया वो हम सब ने सुना, उसको आत्मसार किया और मुरली सुनने के बाद एक बात हर एक को महसूस हुई कि अरे भगवान के बच्चे डायरेक्ट परमात्मा की संतान और वो चिंता में जाएं या बोझ को महसूस करें कैसे हो सकता। इसलिए बाबा ने हमको हम कौन हैं, किस कारण से हैं और अगर हम उस स्मृति में रहें तो कैसे हैं, और अगर थोड़ी बहुत विस्मृति आने के बाद कुछ हो भी जाए उससे भी कैसे जल्दी से छुटकारा पाकर हम सदा वो रहें जो दुनिया में कोई नहीं रह सकता और उसके बाद सदा के लिए वो बन जाए। तो बाबा ने एक मुरली में सारा सार समेटकर बच्चों के मार्ग को क्लियर करने के लिए जो महावाक्य उच्चारे हैं आज हम उनका क्या कहते हैं रिवाइज करते हैं। ठीक है, भक्ति में हम एक ही शास्त्र को, जो हमारे कितने शास्त्र हैं कितनी बार पढ़ा होगा, एक जन्म में कितनी बार पढ़ा होगा और अनेक जन्मों में तो बहुत बार पढ़ा होगा, और पढ़ के कन रस उनका बहुत अच्छा महसूस होता है और हमने परमानेंट सोच रखा था कि ये शास्त्र हमारे आधार हैं, नैया हैं, और जब तक दुनिया चलेगी और जब तक हम रहेंगे या इस जन्म में या अगले जन्म में ये शास्त्र हमारे साथ रहेंगे। बाबा कहता है मैं कलयुगी दुनिया की हर चीज का अंत करना चाहता हूं, गीता पढ़ो तो लास्ट बारी पढ़ो, और मुरलियां भी बाबा कहता है जो मैं चला रहा हूं ये दवाई है, दवाई मरीज को दी जाती है और कोई भी व्यक्ति सदा मरीज नहीं रहना चाहता, सदा अस्पताल में नहीं रहना चाहता, तो अस्पताल से छुट्टी तो दवाई से भी छुट्टी। इसलिए बाबा कहते हैं इन मुरलियों को यद्यपि बाबा ने दो तीन बार रिपीट की हैं, ये तीसरी बार रिपीट हो रही है क्योंकि नए नए बच्चे आ रहे हैं, एक ही क्लास है तो नए बच्चों को पहली बार सुनी देती है, दूसरों को रिपीट हो जाती है, ताकि इसके बाद हमें ये मुरली दोबारा ना सुननी पड़े, ऐसा इस मुरली को धारण करके हमको इस बनना है। तो आइए इस मुरली को हम दोबारा से सुनते हैं। तो वास्तव में ये मुरली 15 दिसंबर 2011 की है और जैसा कि हम जानते हैं इसका विषय क्या था, सदा फखुर में रहकर بے فکر بادشاہ بنو، تیور پرشارت دوارا سمپن اور سمان بن کے ساتھ چلنے کی تیاری کرو. آج باپ دادا بے فکر بادشاہوں کی سبا کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ جو سبا ہے، جو یہ مرلی سن چکی ہے، یہ بے فکر بادشاہوں کی ہے. اور کل بابا نے ہاتھ اٹھوایا تھا کہ جو بے فکر بادشاہ ہیں وہ ہاتھ اٹھاؤ اپنے لیے. بابا اوپر دیکھے گا دایاں ہاتھ اٹھانا کہ ہم سب کون ہیں، بے فکر بادشاہ. بس بابا کے پاس فوٹو کھچ گیا. اچھا، تو بابا کہتے ہیں یہ سبا اس سمے ہی لگتی ہے، کیونکہ سبھی بچوں نے اپنے فکر باپ کو دے کر باپ سے فکر دیا، فخر لے لیا ہے. اردو کا شبد ہے، فکر بھی اردو کا شبد ہے اور فخر بھی اردو کا شبد ہے. کہ جو ویکتی فخر میں رہتا ہے اپنے میں، فکر میں وہی رہ سکتا ہے جس کو کوئی فکر نہ ہو، اور جو فکر میں ہوگا وہ فکر میں نہیں رہے گا. تو دعائی بابا نے کیا بتائی ہے، اپنے فکر میں رہو. ہم پرم پتا پرماتما کی ڈائریکٹ سنتان ہیں، پرماتما ہمارے سارے فکر دور کر دیے ہیں. کوئی غلطی سے آ بھی جائے تو دور کر دیتا ہے. اس فکر میں رہیں گے تو فکر کا سوال ہی نہیں. دنیا میں فکر ہی فکر ہے اور یہاں بے فکر ہی بے فکر ہے. یہ سبا ابھی ہی لگتی ہے، اور یہ سبا صرف بیٹھنے کو نہیں بابا نے کہا. ہم لوگ کرم یوگی ہیں تو بابا کہہ رہے ہیں یہ سبا ابھی ہی لگتی ہے. آگے سننا، آپ بھی ہر ایک سویرے سے اٹھتے، اب شروع ہو گیا کہ ہم بے فکر کب سے کب تک ہیں، سویرے سے اٹھتے کرم کرتے بھی بے فکر بادشاہ بن کے چلتے ہو نا. تو مارننگ سے لے کر ہم بے فکر بادشاہ ہیں، چاہے امرت ویلے جا رہے ہیں، اپنے کمرے سے امرت ویلے جا رہے ہیں، تو کون جا رہا ہے؟ چنتا وقتی جا رہا ہے، بے فکر بادشاہ جا رہا ہے. اچھا، یہ بے فکر جیون، یہ صرف مارننگ کا سوال نہیں ہے، کسی دن کی دنچریا کا سوال نہیں ہے، یہ بے فکر جیون کتنا پیارا لگتا ہے. جن کو یہ بے فکر جیون بھگوان کا دیا ہوا اتنا پیارا لگتا ہے، ان کو ایک ہاتھ اٹھانا چاہیے، دو ہاں؟ دنیا میں کہتے ہیں ہینڈز اپ، وہ تو ڈرانے کے لیے کہتے ہیں، پر بابا کہتے ہیں بچوں کو فکر کتنا اچھا ہے ہی نہیں. اچھا، تو بابا آپ کہتے ہیں بے فکر کی نشانی کیا دکھائی دیتی ہے؟ ہماری نشانیاں کوئی تلک لگا کر، کوئی وستر دھارن کر کے نہیں ہے، ساری سوکشم ہے. ہر ایک کے مستک میں لائٹ، آتما چمکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. وہ لوگ نشان لگا لیتے ہیں، لیکن بابا کہتا ہے آپ کی تو آتما چمکتی ہوئی، کتنی چمکتی ہوگی بھلا؟ کوئی بلب چمکتا ہے جیسے 500 واٹ 1000 واٹ، اس طرح چمکتی ہے. نشانی کس چیز کی ہے؟ کہ جتنا بے فکر اتنی لائٹ. فکر میں آیا، وولٹیج کم ہوا، تب بابا کہہ رہے ہیں کہ آتما کی لائٹ اور بے فکر کا آپس میں کنیکشن ہے. کہ بابا کہتے ہیں یہ بے فکر جیون कैसे बनी? बाप ने सभी बच्चों को जीवन से फिक्र लेकर फखुर दे दिया, है ना। जैसे वो कहते हैं कि भगवान ने लिया क्या और दिया क्या, छोटी छोटी कहानियां तो बनाते हैं, चावल लेके महल दे दिया, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सारे फिक्र लेके जाओ फखर दे दिया। जैसे किसी का कोई बहुत बड़ी प्राप्ति हो जाए, मान लो लॉटरी निकल आए, छोटी एग्जांपल है, 10 करोड़ की लॉटरी निकल आए, तो जब वो लॉटरी लेने से पहले क्या था, बड़ी चिंताएं थी, इसका पैसा देना है, उसका पैसा देना है, मकान का किराया भी नहीं दिया। लेकिन जब 10 करोड़ की लॉटरी लेकर वो आता है तो उसकी चाल कैसी होती है, उसका सोच कैसा होता है? वो कहता है किराया तो क्या, अब मैंने कौन सा बिल्डिंग खरीदना है ये सोचू। इसलिए बाबा कहता है इसी प्रकार से सारे फिक्र लेकर ऐसा फखुर दे दिया, और हमारे फखुर की कितनी कीमत है वो सबकी बुद्धि में रहती है। ना केवल ये जन्म, ना केवल सारा संगम युग, ना केवल सतयुग, बल्कि त्रेता के अंत के बाद भी इतना फखुर दे दिया, जो इतनी प्राप्ति है। तो जितनी इतनी बड़ी लॉटरी निकले आए, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब कुछ, दुनिया नई, तो कैसा होगा, उसको फिक्र सताएगा क्या? जिनके जीवन में फखुर नहीं फिक्र है, वो भी बाबा ने थोड़ा सा बता दिया है, उनके मस्तक में लाइट नहीं चमकती है। अच्छा, लाइट नहीं चमकती तो फिर क्या होता है? उनके मस्तक में बोझ की रेखाएं देखने में आती है। कहा जाता है फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, कि जो व्यक्ति के अंदर होगा उसके चेहरे से दिखाई देगा। आप बहुत खुश हैं, खुशी में बैठे हैं, अकेले ही बैठे हैं, तो दूसरा कोई अजनबी भी आएगा तो क्या देखेगा, ये तो बहुत खुश बैठा, तो किसने बताया, उसने तो बोला भी नहीं, तो दिखाई देता है ना। तो बाबा कह रहे हैं उनके मस्तक से बोझ की रेखाएं दिखाई देती हैं, और कोई मिलने आए और आप ऐसे बैठे हो तो समझेगा कुछ है। इसलिए बाबा कह रहे हैं उसके लाइट, और लाइट के मतलब तो आप जानते हैं, सिर्फ रोशनी नहीं, लाइट मैंने हल्का, तो जो जिसके लाइट दिखाई देगी उसकी चाल कैसे होगी, उसके पांव जमीन पर नहीं पड़ेंगे, वो हर वक्त नाचता नाचता लगेगा, वो वाला डांस नहीं, नेचुरली उसकी चाल ऐसी होगी। तो बाबा कहते हैं तो बताओ आपको क्या पसंद है, लाइट या बोझ, क्या पसंद है? लाइट। कई लोग बोझ के इतने आदि हो जाते हैं, इतने आदि हो जाते हैं, अगर उनका बोझ उतार दो तो उनको रात को नींद भी नहीं आती, कहते दोबारा बोझ डालो तो मेरे को नींद आएगी, ऐसा भी होता है। कोई व्यक्ति को 12 साल की जेल की कैद की सजा हो गई, हथकड़ियां लगा दी, 12 साल बाद छूटा, घर आया तो उसको उन्होंने अच्छी तरह बिस्तरा बना के दिया, सो जाओ, कहते नींद नहीं आ रही, हथकड़ियां लगाओ तब मैं सोऊंगा। इस प्रकार से भी होता है। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि तुमको लाइट पसंद है तो लाइट रहो, क्योंकि लाइट रहने की भी आदत डालनी पड़ती है। किसी चीज की आदत लंबी हो जाए, इसको संस्कार कहते हैं, तो आप चाहते कुछ हैं होगा कुछ। इसलिए बाबा कह रहे हैं आपको क्या पसंद है, लाइट या बोझ? अगर लाइट पसंद है, लाइट रहते हो तो क्या चिंता रहती है, कहीं मेरा लाइट रहना डिस्टर्ब ना हो जाए, ये भी चिंता होती कि आज तो मैं ठीक हूं, पता नहीं कल मैं ऐसा ही रह पाऊंगा कि नहीं, वो चिंता भी व्यक्ति की लाइट को उड़ा देती है। मान लो आप खुश हैं, ठीक ठाक जा रहे हैं, आगे एक रोगी आ गया या शमशान घाट में चले गए, तो खुशी रहेगी? अरे कल भी मेरे साथ भी ऐसा होगा, हम लोगों के साथ ऐसा हो सकता है? कल मान लो आपको शमशान घाट जाना पड़ जाए किसी को छोड़ने के लिए, तो आपको क्या लगेगा? जो दुनिया वालों को लगता है क्या लगेगा? हमको तो पहला ज्ञान मिलता है तुम आत्मा हो, ये शरीर वरीर कुछ नहीं है, ये तो बदल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, चोला बदल लिया, हमारा भी बदल जाएगा। तो हमारा स्लोगन क्या है? अम्मा मरे, याद आ गया, अम्मा मरे, हमारी पहले मर चुकी है। अच्छा बाबा मरे, कोई भी मरे, तो इसलिए हमको उससे भी चिंता नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं आप सबको बेफिक्र लाइफ पसंद है ना, तो इसलिए फिक्र आ भी जाए तो बाप बैठा है, मुझे दे दो। जैसे किसी बच्चे को कोई पेमेंट करनी पड़ जाती है स्कूल में, तो क्या कहता है, पिताजी हैं, पिताजी दे दो, एटीएम है पिताजी, तो जो मर्जी ले लो उनसे। इसलिए बाबा कहता है हमको एटीएम मिला हुआ है, कोई फिक्र आए बाबा को। तो बाबा कहते हैं आपको तो बेफिक्र लाइफ पसंद है, लेकिन देखने वाले भी बेफिक्र लाइफ पसंद करते हैं। लोग किसको देखना चाहते हैं? कई बार कहते ना, सुबह सुबह जाने कौन मनहूस दिख गया है, ऐसा चेहरा किसी को दिख जाए तो सारा दिन उसके मन में वैसा इम्प्रेशन रहता है। किसी अच्छे का चेहरा देखो ताकि सारा दिन वो इम्प्रेशन अच्छा रहे, वो तो कहावत है। लेकिन दुनिया वाले भी उसके ही नजदीक जाना चाहते हैं, उसके ही पास बैठना चाहते हैं, उठना नहीं चाहते जो खुश करे। आओ आपको कहा जाए जानकी दादी जी के पास आप बैठ जाओ, तो आपका ख्याल आप उठना चाहेंगे? वो उठाएंगे भी तो कहेंगे नहीं मैंने और बैठना है। तब बाबा कहता है कि दुनिया वाले भी खुश को ही पसंद करते हैं, बेफिक्र को पसंद करते हैं। चिंता वाले से तो कहते हैं चढ़ा जल्दी से छूटे। अच्छा तो बाप दादा आज चारों एयर के बच्चों से, चाहे वो सन्मुख हैं चाहे जहां भी बैठे हैं, बच्चों के मस्तक के बीच चमकती हुई लाइट ही देख रहे हैं। ये बच्चे लाइट हैं, माता पिता भी, कोई भी आपके मिलने आएगा तो क्योंकि भी राजी खुशी तो है, सब ठीक ठाक तो है। डॉक्टर भी हॉस्पिटल का राउंड मारेगा तो मरीज को कहेगा भी ठीक ठाक है ना, बहुत कोई चिल्लाए तो उसके पास ठीक करने जाता। तो इसलिए सदा बेफिक्र रहते हैं। अब बाबा ने हमारी नब्ज टटोली है, ये सुन तो लिया, सदा बेफिक्र रहते हैं या कभी कोई फिक्र भी आता है? अगर किसी को फिक्र आ जाए बीच में, तो आप उसको बेफिक्र बादशाह कहेंगे कि बादशाह जी को है सुबह से रात तक तो बेफिक्र रहते हैं, शाम को 4 बजे फिक्र आ जाता, आप उसका कहेंगे बेफिक्र बादशाह है? या मंडे टू सैटरडे तो बेफिक्र रहते, संडे को फिक्र आ जाता? नहीं, बेफिक्र मैंने बेफिक्र। इसलिए बाबा कहते हैं कि कोई फिक्र भी आ जाता है किसी प्रकार का, तो बाबा क्या याद करा रहे हैं, जब बाप ने प्रकृति जीत, विकारों पर जीत बना दिया। दो ही चीजें तंग करती हैं, या तो प्रकृति या विकार। अगर बाबा ने तो जीत बना दिया, दुनिया वाले माया जीत कहते हैं, बाबा विकार जीत कहता है, और प्रकृति जीत बनाता है, दोनों ही फिक्र के कारण हैं, तो फिर फिक्र कैसे आ सकता है? तो बाबा कहते हैं तो हाथ उठाओ बेफिक्र बने हो, तो आसानी से सब हाथ उठा देंगे, ये तो दूसरे को देखकर उठा देंगे, वो उठा रहा है मैं भी उठा दूं, है ना? या आधा उठाएंगे, कि बाबा पूछ रहा है तो आधा उठा दो, या फिर करेंगे उठा भी दें और ना भी उठाएं, जल्दी से नीचे कर लेंगे, ऐसा भी होता है। तो यो तो हर एक अपनी हालत के अनुसार जानता है। तो बाबा पूछ रहे हैं सदा बने हो या कभी कभी बने हो। तो उठाने लगे थे, फिर बाबा ने तो कह दिया सदा बने हो, तो फिर नीचे कर लिया कभी कभी बने हो, कभी कभी मैं उठाऊं कि नहीं उठाऊं। तो बाबा कहते हैं कभी कभी वाले भी हैं क्या, हाथ तो नहीं उठाते, बाप दादा भी नहीं देखना चाहते कि कभी कभी मैं कोई हाथ उठाए। आप में से किसी को कहा जाए त्रेता में कौन कौन जाएगा, कोई हाथ उठाएगा नहीं। बाप दादा हर बच्चे को बेफिक्र बादशाह देखना चाहते हैं, बाबा तो उसी से हाथ उठवाना चाहते हैं जो बेफिक्र बादशाह। अगर कभी कभी वाले भी हैं तो बाबा कहते हैं उस लाइन से इस लाइन में आ जाओ। कभी कभी वाले हैं लेकिन सदा वाले बनना है तो भी बाबा ने फार्मूला बता दिया। और ये फार्मूला घर जाके लगाने का नहीं है, अच्छा हम अपने सेंटर में जाके एक मुरली पढ़ेंगे, ये आप अभी भी कर सकते हैं। वो क्या फार्मूला है याद है कि नहीं, याद है या लगा लिया है या भूल गया है? तो बाबा कहते हैं बहुत सहज विधि है कि जो भी थोड़ा बहुत फिक्र आता है या आया हुआ है तो मेरे को तेरे में बदल लो। ये हद के मेरेपन को मेरे को तेरे में बदलने की बहुत सहज विधि है। क्या ये बाबा कोई भी चीज आए ये मेरा नहीं है तेरा है, कैसे? अब ये गौर से सुनने की बात है कि मेरे को तेरे में बदलने का क्या मतलब है। क्या मेरा फिक्र तेरा हो गया? वो तो बाबा कहता है वैसे भी दे सकते हो, मेरे को बुखार है तो बाबा तेरे को दे दूं, नहीं इसको सोचना है। तो उसको अब गौर से सुनना। तो बाबा कहते हैं मेरे को तेरे में बदलने की बहुत सहज विधि है, क्योंकि जितना भी मेरा पन है वो हद का है। अब सुनिए, आप तो कहते भी हो कि मेरा कौन, मेरा कौन? बाबा। अब सुनो, आप तो कहते भी हो मेरा बाबा, तो अब मेरा क्या रहा फिर? जब आपने कह दिया मेरा बाबा तो आपके सब कुछ का बाबा, फिर बाकी मेरा क्या रहा? यह है विधि। हद का मेरा तो समाप्त हो गया, मैं कहूं मेरा शरीर, कह रहा हूं मेरा बाबा और कह रहा हूं मेरा शरीर, तो क्या मेरा शरीर बाबा का नहीं हो गया? मेरा बाबा हो गया तो हद का समाप्त हो गया। सभी दिल से कहते हो ना, अब बाबा जो रोज हम रिपीट करते हैं, सभी दिल से कहते हो ना मेरा बाबा, और क्या कहते हो? प्यारा बाबा, और क्या कहते हो? मीठा बाबा। अब बताओ, हम सब कहते हैं ना मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। जब हम मेरा बाबा कहते हैं तो सिर्फ मेरा बाबा ही है या और भी कई मेरे हैं? मेरा बाबा भी और ये भी मेरा, वो भी मेरा, तो गड़बड़ हो जाएगी। जब हम प्यारा बाबा कहते हैं तो प्यारा सिर्फ बाबा या बाबा भी प्यारा, मेरा दोतरा भी प्यारा, मेरा पोतरा भी प्यारा? जब हम मीठा बाबा कहते हैं तो सिर्फ बाबा ही मीठा लगता है, तो ये भी मीठा लगता है, वो भी मीठा लगता है? ये क्वेश्चन है। तब बाबा कहते हैं कि गाते हैं हम ये मेरा तोशी बाबा एक, यहां तक तो सब कहेंगे, आगे की लाइन क्या है? आगे की लाइन कहते हैं मेरा तो शिव बाबा एक और दूसरे भी मेरे, ये नहीं कहते दूसरा ना कोई। तो फिर ये मेरे वाले में मार्जिन है। इसलिए बाबा कहते हैं कि मेरा का मतलब क्या है, आप घर में रहो, सड़क पे चल रहे हो, सो रहे हो, बैठ रहे हो, उठ रहे हो, मेरा बाबा रहे। बाबा के कारण ही मैं शरीर में हूँ, बाबा की सेवा में लगा हुआ हूँ, बाबा जो भी काम कर रहा हूँ बाबा के निमित्त, पैसा कमा रहा हूँ तो भी बाबा का, खर्च रहा हूँ तो भी बाबा के निमित्त, शरीर के निमित्त भी खर्च रहा हूँ, ये भी बाबा का ही है। ऐसे एंगल से 100% मेरा कहोगे तो आपको प्यारा भी बाबा ही लगेगा और सब चीज प्यारी लगेगी। मैं कहूँ प्यारा बाबा, फिर मैं कहूँ ब्राह्मण फैमिली में बाकी तो प्यारे, ये मेरा प्यारा नहीं है जो मेरे कमरे में रहता है ना, रात को खूब खराटे मारता है, मेरी नींद खराब करता है, बाबा इसको मेरा कमरा चेंज कर दे या इसको चेंज कर दे मुझे, आप बताओ, तो वो भी तो बाबा का है कि नहीं है। इसलिए बाबा कहता है टोटल हर चीज को हम प्यार करने लग जाए, कलयुग भी आ गया ठीक है, इसको भी आना ही है। कोई कहे मुझे यंग शरीर ही सदा मिले, बूढ़ा शरीर ना मिले, तो दुखी ज्यादा होगा। इसीलिए बाबा कहता है कि मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, तो हर चीज मेरी, बाबा की रचना भी प्यारा, तो हर चीज से प्यार, और फिर मीठा तो किसी चीज को देखकर घृणा ना आए या नफरत ना आए, तब जाके बैठता है। अच्छा, अब बाबा कहते हैं तो मेरे को तेरे को तेरे में समाना, तो मेरे में तेरे को समाना क्या मुश्किल है, जो चीज है ये तेरी है, नहीं मेरी, बाबा की है, फर्क क्या है, एक है ते और एक है मैं, कितना छोटा सा फर्क है। संकल्प कर लिया सब तेरा, तो फिर मेरा क्या है, मेरा बाबा है। हम क्या करते हैं, बाबा सब तेरा है, कुछ चीज छिन गई तो बाबा मेरा छिन गया, तो ये तो गड़बड़ हो गई ना, तेरा माल मेरा माल, मेरा माल भी मेरा माल, ये तो नहीं चलेगा ना। अच्छा, अब बाबा हमारी महिमा कर रहे हैं बच्चों की। बाप दादा ने देखा कि मेजोरिटी बच्चों ने हद के मेरे को तेरा बनाया है, इसलिए क्या बन गए, बेफिक्र बादशाह। तो बाबा के मेजोरिटी बच्चे बेफिक्र बादशाह हैं, जिन्होंने हद के मेरे को छोड़कर तेरा कर दी। ये शरीर तेरा, ये धन ये तेरा, जो भी है ये तेरा, ये मेरी झोंपड़ी ये भी तेरी। तो बेफिक्र बादशाह कौन हो सकता है जिसने मेरा ना रखा हो। तो सबूत देखना हो तो दादी जानकी को देख लो, देखो कहा हाथ उठाओ बाबा ने, कौन रेडी है जाने को, तो सबसे पहले किसने उठाया, बाबी तो बाकी तो सोच में पड़ गए थे, दादी ये कर रही है, तो देखा ना, क्योंकि तेरा है। तो आज बाप दादा बच्चों को बेफिक्र बादशाह स्वरूप में देख रहे हैं। देखो भक्ति मार्ग में भी आपके चित्र बनाते हैं तो डबल ताज दिखाते हैं। अब बाबा ने यादगार बताया हमको, बाबा बेफिक्र बादशाह के रूप में कैसे देख रहे हैं, मान लो मेरे को थोड़ा सा फिक्र है, पर बाबा मुझे बेफिक्र बादशाह रूप में कैसे देख रहे हैं, बाबा मेरा वर्तमान फिक्र वाला रूप नहीं देख रहे, हर एक आत्मा का संपन्न और संपूर्ण रूप है ना, बाबा वो देख रहे हैं। इसलिए बाबा यादगार कर रहे हैं कि आपके चित्र में डबल ताज दिखाते हैं, एक तो लाइट का ताज है, क्योंकि आत्मा जो है वो लाइट है, ये बेफिक्र आत्मा की निशानी है, अगर फिक्रमंद आत्मा होगी तो लाइट नहीं दिखेगी। फिर बाबा कहते हैं मस्तक में लाइट चमकती है, दूसरा ताज विकारों पर विजयी बने हो इसलिए ताज है, वो कौन सा है, एक तो लाइट के दो ताज हैं, एक तो ये वाला है और एक जो लाइट का क्राउन आभा मंडल जो देवताओं के पीछे दिखाते हैं, वो रियल नहीं दिखता रहता है, तो ये भी आपके पीछे है, इसलिए ये अटेंशन रखो कि जब बाप दादा ने फिक्र लेकर फखर दे दिया तो क्या बन गए, बेफिक्र बादशाह। हर वक्त हमको देखना है हमारे दो ताज कायम है, एक तो आत्मस्मृति का और पीछे लाइट का क्राउन अर्थात विकारों से मुक्ति का। जैसे किसी सिपाही संतरी को भी वो पगड़ी उतार दे तो कोई वैल्यू नहीं देता, इसी प्रकार से अगर आपने किसी ताज को भी या आत्मा की स्मृति को भूल गए या वो विकारों वाले में से अहंकार आ गया या क्रोध आ गया या काम, तो फिर आपके ताज गायब हो जाएंगे, चिंता आ जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं अटेंशन रखो कि जब बाप दादा ने फिक्र लेकर फखर दे दिया तो क्या बन गए, बेफिक्र बादशाह। बादशाह बने हैं तो फिर तख्त भी चाहिए, बादशाह सलामत सदा खड़े थोड़ी रहेंगे। तो बादशाह बाप दादा ने तीन तख्त का मालिक भी बना दिया। जानते हो तीन तख्त कौन से हैं? एक तो है भ्रिकुटी का तख्त, आत्मा रहती है, कहाँ रहती है, भ्रिकुटी के बीच में, और उस तख्त का नाम बाबा कहते हैं अकाल तख्त है। सिखों ने अमृतसर में एक अकाल तख्त बनाया हुआ है। तो अकाल तख्त ये बताओ कि आपके शरीर में है या आत्मा में है? ये बताओ क्यों जी, अकाल तख्त कहाँ है? हाथ लगा के कहोगे तो यहाँ है, वो तो कह देंगे हैं? खालसा जी से पूछे या कोई भी बता सकता है अकाल तख्त कहाँ है, शरीर में है या आत्मा में? बताओ जी। बाबा ने कहा आपको तीन तख्त दिए हैं, एक है भ्रिकुटी में अकाल तख्त, तो क्या मतलब हुआ, अकाल है आत्मा और उसके रहने का स्थान है बैठने का तख्त, तो शरीर में है, समझा आपने, इसको नोट रखना। दूसरा तख्त है बाप दादा का दिल तख्त, और तीसरा है विश्व का तख्त, राज्य का तख्त। तो आप सबको ये तीनों तख्त प्राप्त है, ठीक है। अब बाबा कहते हैं इनमें सबसे श्रेष्ठ तख्त है बाप दादा का दिल तख्त, वो मिलेगा तो ऑटोमेटिक मिलेंगे। तो चेक करो ये तख्त पर रहते हो, बाबा कहते हैं सब तख्त पर रहते हैं, बताइए फिर हाथ उठवाएं, बाबा के दिल तख्त पर सब रहते हैं, हाथ उठाना तो आसान है, चलो अच्छा पीछे वाले भी उठा लो। अब बाबा कहते इसकी निशानी क्या, क्योंकि बाप दादा के दिल तख्त पर कौन बैठता है, जिसने सदा स्वयं भी बाप दादा को अपने दिल तख्त में बिठाया हुआ है। अब बताओ सदा हमारे दिल में बाबा रहता है या बाबा भी रहता है, या कष्ट के समय बाबा बुला लेते हैं जैसे डॉक्टर को बुलाते हैं और बाकी समय और रहते हैं? तो बाबा कहते हैं बाबा को दिल में बिठाया है तो उसकी निशानी क्या है, अपने दिल तख्त पर बाप दादा को बिठाया है जो सदा श्रेष्ठ स्थिति में मास्टर सर्वशक्तिवान हो। मास्टर सर्वशक्तिवान या चिंता में आ जाए, भय में आ जाए, तो समझो कि बाबा को दिल तख्त में नहीं बिठाया हुआ। चेक करो कि सदा तख्त नशीन है या कभी मिट्टी में भी आ जाते हैं। ये देह अभिमान मिट्टी है, बहुत समय मिट्टी में रहे हैं तो कभी कभी मिट्टी में तो नहीं चले जाते। तो बाप दादा सभी बच्चों को समय का इशारा दे रहे हैं, अचानक का पाठ पक्का करा रहे हैं। इसके लिए इस संगम के समय का बहुत बहुत महत्व रखना है, क्योंकि इस एक जन्म में अनेक जन्म की प्रारब्ध बनानी है। یہ جو ہم کو بابا نے تاج دیا، تخت دیا، تو وہ سدا سنگم پر رکھنا ہے. ایسا نہ ہو اسی وقت آپ تاج اور تخت کو اتارے ہوئے ہوں اور انت کال آ جائے تو پھر کیا ہوگا، مٹی والا آ جائے گا، لاسٹ انت مت سو گتے ہو جائے گا. اس لیے باپ دادا نے اشارہ دیا تھا کہ سنگم کے سمے دو باتوں کو ہر سمے اٹینشن دینا ہے. وہ دو باتیں یاد ہیں، وہ تو آپ کو یاد ہی ہوں گی. سنگم کے کیا چیز ہوتی ہے؟ سمے اور سنکرم. سنگم کا سمے اور سمے جو ہوتا ہے اس کا سب سے چھوٹا بھاگ ہوتا ہے سنکلپ. سمے کا سب سے چھوٹا بھاگ سیکنڈ نہیں ہے، سپلٹ سیکنڈ بھی نہیں ہے، سنکلپ. سنکلپ 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 جوڑتے جاؤ تو ایک منٹ میں کتنے سنکلپ ہو گئے. کبھی تیز بھی چلتے ہیں، کبھی سلو بھی چلتے ہیں، لیکن سمے کا سب سے چھوٹا بھاگ ہے سنکلپ. تو اس لیے اگر ہم سنکلپ کو دھیان دیں گے تو سمے ہمارا آپ ہی ویلیوبل ہو جائے گا. ہم نے یہ دیکھنا ہے کیونکہ آگے مرلی میں آ رہا ہے ویرتھ سنکلپ، تو ویرتھ سمے کس سے جاتا ہے؟ ویرتھ سنکلپ سے. تو باپ دادا کو سبھی نے ویرتھ سنکلپ سنکلپ دوارا دینے کی ہمت رکھی تھی. پیچھے اس سے پہلے بابا نے سب بچوں سے سنکلپ کرایا تھا کہ ہم ویرتھ سنکلپ آج سے سٹاپ کرتے ہیں، اور بچوں نے سنکلپ کر کے ہمت رکھی تھی، ہاں بابا آپ ہمیں ہمت دے رہے ہو، ہم اپنے من سے دیڑھ سنکلپ کرتے ہیں کہ آج سے ویرتھ سنکلپ نہیں کریں گے. وہ بابا یاد کروا رہے ہیں. تو چیک کرو کہ وہ ہمت سدا قائم ہے، کیونکہ ہمتیں بچے ایک بار تو باپ ہزار بار مدد کرتے ہیں. کئی بار بچے کہتے میں یہ کر تو لوں، پھر میرے سے پتہ نہیں ہو پائے یا نہ ہو پائے. تو بابا نے گارنٹی کری ہوئی ہے کہ ہر اچھے سنکلپ کے لیے، ایسے نہیں کوئی چوری کرنا چاہتا ہے تو کہ بابا میرا چوری کا سنکلپ پورا کر دو، ایسے نہیں. اچھے سنکلپ کے لیے، دڑھ سنکلپ کے لیے جتنا دڑھتا ہوگی بابا کی مدد بہت ہے اس سمے سنگم پر. تو ابھی کیا سمجھتے ہو؟ ویرتھ سنکلپ کا جو ہمت رکھ کر باپ کے آگے سنکلپ کیا وہ قائم ہے. اب بابا کہہ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں قائم ہے، کوشچن پوچھ رہے ہیں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کیا کہ پورا قائم نہیں ہے. اچھا، اب بابا اس کا امپورٹینس بتا رہے ہیں، کیونکہ اس ویرتھ سنکلپوں میں سمے بہت جاتا ہے، اور سمے ہے سنگم کا. تو سنگم کا ویلیوبل سمے اگر ویرتھ سنکلپ میں جائے گا تو کیا ہوگا؟ جو ہماری ڈیوٹی ہے، جو ہمارا جیون کے لیے لکش ہے، وہ مس ہو جائے گا. سنکلپوں میں سمے بہت جاتا ہے، اور آپ کا اس سمے کے پرمان کاریہ ہے وشو کی آتماؤں کو سندیش دینا، تو وہ کاریہ رہ جائے گا. تو ویرتھ سنکلپ کو سماپت کرنا ہے، تب ہی دکھی اشانت آتماؤں کو سکھ شانتی کا انبھو کرا سکیں گے. تو ہمارا کام کیا ہے؟ بھگوان کا کام ہے دکھ ہرتا سکھ کرتا. ہمارا کام صرف سندیش دینا نہیں ہے، لیکن اپنے شدھ سنکلپوں سے دوسروں کے دکھوں کو دور کرنا بھی ہے. اس لیے باپ دادا کہتے ہیں اگر ویرتھ سنکلپ کرو گے سماپت، تب دکھی اشانت آتماؤں کو سکھ شانتی کا انبھو کرا سکیں گے. اب دادی جی کیسے آپ کو انبھو کراتی ہیں؟ آپ جاتے ہیں، ایک منٹ کے بعد آپ آتے ہیں تو آپ کو چہرہ چینج ہوتا ہے، خوشی سے بھرا ہوا ہوتا ہے. کیسے کراتی ہیں؟ کہ جو بھی آپ کے اندر چنتا یہ وہ ہوتا ہے اپنے شدھ سنکلپ سے غائب کر دیتی ہیں. تو یہ ہمیں بھی کرنا ہے. تو بابا کہتے ہیں باپ دادا کو دکھی بچوں کو دیکھ کر ترس پڑتا ہے، آپ کو بھی اپنے بھائی بہنوں کو دیکھ کر तरस तो पड़ता होगा, तरस तो पड़ता ही है ना। बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय सभी की रुचि है, प्लान भी बनाया है, प्रैक्टिकल में भी किया है, और क्या ये सेवा का। तो बाप दादा यही चाहते हैं, प्रोग्राम तो सब अच्छे किए हैं, इसकी मुबारक भी दे रहे हैं। बाबा क्या कहते हैं, परमानेंटली जो हुआ सो क्या, जो हुआ सो अच्छा, और जो होगा और भी अच्छा, ये आप परमानेंट समझ लो। अच्छा, अब बाबा कहते हैं, मुबारक भी दे रहे हैं, लेकिन अभी समय के प्रमाण जल्दी जल्दी उनको वारिस बनाओ, अर्थात परिचय दे दिया नहीं, कोशिश करो कि वो भी अपना कुछ भाग्य ले ले, जो कुछ ना कुछ वर्षे के अधिकारी बन जाएं। अच्छा अच्छा बहुत कहते हैं, बाप दादा ने भी बच्चों की सेवा की यही रिजल्ट तो देखी है, और बाप खुश भी है कि दिल से कर रहे हैं, और अभी समय प्रमाण सुनते भी दुनिया वाले रुचि से हैं, इतना अंतर तो आया है। अच्छा अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा बना के कुछ ना कुछ वर्षे के अधिकारी बनाओ। ये हम बाबा ने हमको एक्स्ट्रा सेवा दी है कि मैसेज देकर छोड़ नहीं दो। इसके लिए बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया था कि अभी समय अनुसार तीव्र पुरुषार्थी बनने की आवश्यकता है। सहज योगी सहज ज्ञानी का ये मतलब नहीं है कि हम पुरुषार्थी भी सहज बन जाए ढीले। तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए अब बाबा हर चीज का तरीका भी बता रहे हैं साथ साथ, ये करना है तो ये करो। तो तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए मुख्य पुरुषार्थ है क्या, याद है? हाँ ठीक, मुख्य पुरुषार्थ है सेकंड में बिंदी लगाना। सेकंड में बिंदी, सेकंड और बिंदी दोनों एक समान होते हैं, सेकंड भी इतना बिंदी भी इतनी, लेकिन सेकंड में बिंदी लगाने का अर्थ क्या है? सेकंड में बिंदी लगाने का अर्थ यह है कि ड्रामा में जो हो गया हो गया, उसको दोबारा नहीं सोचना, गलत हुआ या ठीक हुआ, या सोचते रहना आज मेरा योग नहीं लगा, आज मेरा योग नहीं लगा, आज मेरा योग नहीं लगा, ये बिंदी लगाना नहीं है। वैसे बाबा कहता है कोई ये भी कह दे आज मेरा योग नहीं लगा, उसको भी मैं योग में गिन लेता हूँ, बोला तो सही योग नहीं लगा। बाबा का अकाउंट का सिस्टम बहुत अच्छा है, बाबा सोचता रहता है बच्चों के नंबर कैसे जोड़ूं, लेकिन असली बात यह है सेकंड में बिंदी लगाना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि बिंदी लगाने का अर्थ ये होता है हम अपने मन को जब चाहे, जहां चाहे, जितना समय चाहे वहां लगा सके, यह है बिंदी लगाना। ये नहीं कि जाना वहां है थोड़ा यहां और सोच रहे हैं, तो अगर सेकंड में बिंदी लगाना आ जाए तो समझो हम ड्रामा पर खड़े हैं। तो बाबा कहते हैं यही तीव्र पुरुषार्थ की निशानी, अर्थात हमको यही पुरुषार्थ अब करना है कि सेकंड में बिंदी लगाना, फटाफट इधर चेंज कर जाना, तब हम जब लास्ट मोमेंट आएगा चलो तो हम बिंदी लगा सकेंगे, वरना कहेंगे थोड़ा ठहर जाओ मैं ये कर लूं गया। तो अब बाप दादा बच्चों को बेफिक्र बादशाह का रूप देख रहा है, अभी इसी रूप को सदा अनुभव करो, कोई भी कुछ भी आ जाए तो मेरे को तेरे में समा दो तो बिंदी लगती जाएगी। बाप दादा ने सभी बच्चों को साथ ले जाने का वायदा किया हुआ, ये गुरुजी ऐसे नहीं है कि जा अब तुझे छोड़ दिया आगे ते अपना देख, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट वाले भी पढ़ा के छोड़ देते हैं, नौकरी आप ही ढूंढ। तो बाबा कहते हैं मेरी प्लेसमेंट भी फिक्स्ड है कि मैं तुमको लेके ही जाऊंगा। इसके लिए साथ चलने की तैयारी क्या करनी है, बाबा कहते हैं मैंने तो वायदा किया हुआ है, आपने भी किया हुआ है, तैयारी क्या करनी है। बाप तो सेकंड में शरीरी बन जाएगा। अब दादी जानकी जी को शरीरी बनने में देर लगनी है क्या? हम तो सोचते हैं लगनी लगनी तो नहीं है, लेकिन सोचते हैं कि शायद। लेकिन बाबा कहता है बाप तो सेकंड में बन जाएगा, लेकिन आपने जो वायदा किया है और बाप ने भी वायदा किया साथ चलेंगे, तो चेक करो वह तैयारी है। सेकंड में बिंदी लगाई, संपन्न और संपूर्ण बन के चला, तो ऐसी तैयारी है। साथ में तो चलना है ना। बाबा कहते चलना है या बराती बन के चलना है? बाबा पूछ रहे कांध हिलाओ, साथ में चलना है? तो दादी जानकी जी ने फटाफट कहा था कांध हिलाओ चलना है। अच्छा पक्का है? हाथ में हाथ देना इसका अर्थ है समान बनना। तो चेक करो, समय तो अचानक आना है, तो इतनी तैयारी है साथ में चलने की। बाप का बच्चों से प्यार है ना, तो बाप एक को भी साथ ले जाने से पीछे नहीं छोड़ना चाहते। साथ है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ राजधानी में राज गिराने में आएंगे। नहीं तो 1969 से बाबा क्यों वेट कर रहा है? प्यार है ना। नहीं तो टाइम लिमिट दे दे तो मैं तो चलता हूँ, तुम अपना देखो। नहीं, बाबा कहते हैं मंजूर है ना, मंजूर है, तैयारी है, मंजूर है, इसमें तो हाथ उठा लेंगे, ये हाथ नहीं उठाओ, तैयारी है इसमें हाथ उठाओ। मंजूर है तो सब कहेंगे बड़ा हाथ उठाओ। अच्छा, अगर कल भी विनाश हो जाए तो तैयार हो? कहेंगे हाँ जी तैयार हैं। तो बाबा कह रहा है लेकिन अपनी सेवा को समाप्त किया है, इसको तैयारी कहते हैं। ऐसे तो शरीर मजबूरी से भी छोड़ना पड़ेगा। सेवा तो अभी रही हुई है ना, या सेवा समाप्त हो गई है? संदेश सबको पहुंच गया, वारिस बनाने की बात तो छोड़ो, सिर्फ अपने मोहल्ले में ही देखो, आपने हर एक को बाप आ गया है, वर्षा लेना है तो ले लो, ये संदेश दिया है। ये कहते हैं बाहर जाके देते हैं, मल्ले वाले तो हैं ही ना, इसको कभी भी दे देंगे। तो पसंद है कि घर घर में ये उलहना पूरा हो जाए। ऐसे ना कहें कि हमको तो पता ही नहीं पड़ा, बाप आया और चला भी गया, हम तो वंचित रह गए। सभी को मंग है ना, अगर सबको मंग है सेवा करके उलहना पूरा करना है, तो उमंग है तो बाप भी सहयोगी है। अच्छा, तो बाप दादा के दिल की आश तो सभी जानते हो। समान और संपूर्ण, ये दो शब्द हमेशा चेक करो कि क्या बाप की ये आशा पूर्ण की, क्योंकि बाप दादा हर बच्चे को बाप की आशाओं का सितारा समझते हैं। हर एक बच्चे का बाप से प्यार है, ये तो बाप दादा भी जानते हैं। कि इन सभी को मधुबन में लाने वाला कौन है? आप सब मधुबन में क्यों आए, कौन लाया? तो बाप दादा कहते हैं ये प्यार की ट्रेन में आते हैं। आपकी ट्रेन का कोई भी नाम हो, राजधानी एक्सप्रेस या जो भी, लेकिन हमारी ट्रेन का नाम क्या है? बाबा का प्यार एक्सप्रेस। प्यार का प्लेन में आते हैं। तो बाप भी बच्चों के प्यार के सब्जेक्ट में बहुत खुश है। लेकिन ये जो दो शब्द बाप चाहते हैं, समान और संपूर्ण, इसको भी संपन्न करना ही है। तो आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को दिल से स्नेह से देखकर एक एक बच्चे को याद, प्यार और मुबारक दे रहे हैं। ठीक है, तो बाबा ने हमको क्या काम दिया? बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थी बनो, और तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए क्या आसान तरीका बताया है? बिंदी लगाओ। और बिंदी लगाने का अर्थ क्या है? कि जो हो जाए उसको बिंदी लगाओ, और ऐसा अपने मन को हम बनाएं कि जहां मन को लगाना चाहे वहां लगे। बीच में टाइम नहीं लगना चाहिए, टाइम नहीं लगना चाहिए। मान लो सुबह आप उठे, आपने कहा बाबा को गुड मॉर्निंग करना है, ठीक है, पर आपने सोचा पहले मैं बल्ब जला लूं फिर गुड मॉर्निंग करूंगा, फिर थोड़ी देर में कहा जरा ये भी देख लूं गीजर ऑन कर लूं फिर गुड मॉर्निंग करूंगा, तो बाबा कहता ये गड़बड़ है। अगर आप कमरे में सांप निकल आए तो गीजर ऑन करोगे या बल्ब जलाओगे, हैं? इसलिए बाबा कहता है इम्पोर्टेंस ये गुड मॉर्निंग बाबा, मेरा बाबा, मेरा सिर्फ बाबा ही है, अगर और किसी गलती से किसी को मेरा कहा तो नैया लंबे रास्ते चली जाएगी। अच्छा, प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा है, कल उस दुकान पे वो बॉक्स देखा था, आज खरीदने जाना है। अच्छा, तो फिर नहीं है। मीठा बाबा, अरे उस व्यक्ति से मैं देखूंगा उसने कल क्या किया था मेरे, तब नहीं होना। इसलिए बाबा कहता है हर वक्त हम अपनी इच्छा के अनुसार अपने मन को हटा सकें, लगा सकें, ये अभ्यास बिंदी लगाते लगाते तब हम एवर रेडी होंगे। लेकिन सेवा भी करनी है और अन्य आत्माओं को संदेश देके पूरा नहीं किया तो नाम मात्र के एवर रेडी हैं। ऐसे तो कोई भी शरीर छोड़ देगा, पर तू एवर रेडी होकर छोड़ा, अपना पाठ पूरा करके छोड़ा तो संतुष्टि होगी। इसलिए बाबा कहते हैं मन भी संतुष्ट होना चाहिए, मैं एवर रेडी हूं। बोलने में तो हम कह देंगे हर एक एवर रेडी है। तो बाबा की मुरली को घर में जाके दोबारा पढ़िए, जब तक अगली व्यक्तवाणी बाबा की नहीं आती 30 नवंबर को, इसको पढ़ करके इसको अनुभव में लाएं, क्योंकि फिर ये मुरली आपको अगले कल्प ही मिलेगी। ओम शांति।
जिंदगी हमारी।